पाठ एक। हमारे पास अच्छी खबर है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने और क्षमा करने का वादा करता है, हमें ऐसा जीवन देता है जो समाप्त नहीं होगा, बुराई से मुक्ति देता है, और जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं और प्रेम से उसकी आज्ञा मानते हैं, तब तक उसके साथ घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप देखते हैं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है? बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर से प्रेम करने, उसकी आज्ञा मानने और सदैव उसका आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उससे दो तरह से अलग होकर पैदा हुए थे। पहला, हम उसे नहीं जानते, और हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जिसे हम नहीं जानते। दूसरा, हम बुरी इच्छाओं के साथ पैदा होते हैं जो हमें जीवन, ज्ञान और परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देती हैं। हमारी बुरी इच्छाएं मृत्यु, बीमारी, अन्याय, युद्ध, जीवन के सभी दुखों का कारण हैं। हमारी बुरी इच्छाएं हमें परमेश्वर से कैसे अलग करती हैं? बुराई का जड़ स्वार्थ है, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे जैसे एक पुरुष अपनी पत्नी के करीब बढ़ता है, वो आसानी से पहचान लेता है कि उसके शब्द, कार्य और विचार उसे कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं। तो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में भी ऐसा ही है। हम जितना परमेश्वर के करीब आते हैं, उतना ही अधिक हम समझते हैं कि कैसे हमारी बुराई उससे निकटता तोड़ देती है। परमेश्वर से हमारे अलग होने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? परमेश्वर ने हमारे साथ घनिष्ठ दोस्ती बहाल करने के लिए मनुष्य बनना चुना। वह आदमी यीशु था। परमेश्वर के लिए मानव बनना क्यों महत्वपूर्ण था? पहला, हमें व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए। दूसरा, हमारे आनंद, दर्द और संघर्ष का अनुभव करने के लिए। तीसरा, हमारी बुराई की सजा हमारे स्थान पर मरकर भुगतने के लिए। और चौथा, हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए, फिर से जी उठने, हमें उसके साथ घनिष्ठ मित्रता में लाने और हमें ऐसा जीवन देने के लिए जो कभी खत्म ना हो। यीशु ने आंशिक रूप से यह साबित करने के लिए हमारे लिए मरना चुना कि परमेश्वर बुराई को दंडित करता है। हम ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते जो बुराई का दंड ना दे। यीशु की मृत्यु इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बुराई के लिए खुद को दंडित करना चुना, भले ही उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। उनका बड़ा उद्देश्य हमें हमारी बुरी इच्छाओं से मुक्त करना और हमारे दिलों को बदलना था, ताकि हम उनके साथ शुद्ध मित्रता में रह सकें। बाइबल इसी को नए सिरे से जन्म लेना कहती है। इसका अर्थ है पूरी तरह से बदल जाना, अपनी बुरी इच्छाओं की गुलामी से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में रहना। इसका मतलब है कि शुभ संदेश यीशु द्वारा हमारी सजा लेने तक ही सीमित नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु के मरने के बाद वह मृतकों में से जीवित हो उठे और अब भी जीवित हैं। वो हमें एक बदला हुआ जीवन प्रदान करते हैं, हमारे टूटे हुए जीवन के बदले उसका आदर्श जीवन। जब हम इस अविश्वसनीय प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो उनकी आत्मा हमारे अंदर रहना शुरू कर देती है और धीरे धीरे हमारी बुरी इच्छाओं को उनकी भलाई की बढ़ती इच्छा से बदल देती है। हमें शुद्ध और पूर्ण बनाए जाने की प्रक्रिया को पवित्रीकरण कहा जाता है। इस जीवन के समाप्त होने तक हम पूर्ण नहीं होते, हालांकि यह प्रक्रिया तुरंत ही व्यावहारिक परिणाम देती है। उन परिणामों को आत्मा के फल कहा जाता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और आत्मसंयम। यदि हम ईसाई हैं, तो हम इन गुणों में विकसित होंगे। यदि हम नहीं हैं, तो अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पण करें और बाइबल पढ़कर, बुराई से दूर होकर, प्रार्थना करके और उनकी उपासना करके उनके करीब बढ़ें। हम आत्मा का फल पैदा नहीं कर सकते। यह हमारे मसीह के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने पर केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। बाइबल कहती है कि हमें अपना क्रूस उठाना होगा और यीशु का अनुसरण करना होगा। यह वाक्यांश हमारे स्वार्थ की मृत्यु का प्रतीक है। जिस तरह यीशु ने अपना क्रूस यानी एक यातना का उपकरण उठाया था और उस पर लटक कर मर गए, हमें भी प्रतीकात्मक रूप से अपने स्वार्थ की मृत्यु के माध्यम से ऐसा ही करना होगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारी स्वार्थी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं से युद्ध करती हैं। यीशु को पूर्ण समर्पण और विश्वास की आवश्यकता है। वो चाहता है कि हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के बदले बदल लें। यह परमेश्वर और उनके लोगों के प्रति विनम्र सेवा के माध्यम से अपना प्यार दिखाना है। जब हम समर्पण करते हैं और परमेश्वर को अपनी एकमात्र संतुष्टि के रूप में चुनते हैं, तो वो हमें उनकी आज्ञा मानने की शक्ति और इच्छा देते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम उनको वो हवा बनने दें जिसमें हम सांस लेते हैं। यीशु का सांस लें, यीशु का सांस छोड़ो, इसे दोहराते रहें हर दिन, उस दिन तक जब तक हम मर नहीं जाते। ये वो है जो हमें यह भरोसा करने का साहस देता है कि जब वो हमें अपने दुश्मनों के साथ प्रेम से व्यवहार करने का आदेश देते हैं, तो वो ऐसा करने में हमारी मदद करेंगे। यीशु के साथ हमारा रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा हमारे अंदर है। जब हम प्रेम में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उनकी आज्ञा मानेंगे, तो यह रिश्ता आपके जीवन को बदल देगा। फिर जब आप गलतियां करेंगे, तो वो आपको परमेश्वर का सम्मान करने में मदद करेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस प्रकार का जीवन आपको सामान्य जीवन का आनंद लेने से रोकेगा। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी आज्ञा मानने से हम जीवन में परमेश्वर की शांति और आनंद का मजा ले पाएंगे। भले ही हम इस जीवन में कभी भी बुरी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं और हम अभी भी गलतियां करते हैं, यीशु के लिए हमारा प्रेम हमारी बुरी इच्छाओं को भूखा रखता है ताकि वो अपनी ताकत खो दे। परमेश्वर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम उनका, दुनिया का और उनके द्वारा हमें पवित्रता से दिए गए रिश्तों का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हों। वो वादा जिस पर हम में से अधिकांश लोगों को विश्वास करना कठिन लगता है, वो ये है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को बदल देते हैं। वह करते हैं, यह सच है, अन्यथा शुभ संदेश नहीं होगी। अधिकतर ईसाई अच्छा जीवन क्यों नहीं जीते? प्रत्येक ईसाई बुराई से मुक्त रह सकता है, लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम इनकार कर देते हैं। कभी कभी हम ईसाई बनने के बाद भी यीशु के स्थान पर बुराई को चुनते हैं। कुछ लोग बुराई से मुक्ति का अनुभव करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह संभव है या परमेश्वर इसे प्रदान करता है। अन्य लोग बुराई से मुक्त होकर जीने से इनकार करते हैं, क्योंकि यह महंगा है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर के प्रति संपूर्ण निरंतर समर्पण की आवश्यकता होती है। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर के प्रति समर्पण करने के बाद हमें समर्पण में बने रहने का आदेश दिया जाता है। ऐसा लगातार होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे स्वार्थ की ओर लौटने का खतरा है। बाइबल इस प्रवृत्ति को पाप स्वभाव कहती है। यह हमारे जन्म के दिन से लेकर मरने के दिन तक हमारे पास रहता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं, बुराई से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अन्य ईसाइयों के साथ समुदाय में शामिल होते हैं, हमारे अंदर मसीह की आत्मा हमारी इच्छाओं को बदलना शुरू कर देती है और हमें पापी स्वभाव से प्रगतिशील स्वतंत्रता प्रदान करती है। बढ़ने में समय लगता है, इस प्रक्रिया में आशा न खोएं और विकास की धीमी गति को बिल्कुल भी विकास न करने के बहाने के रूप में उपयोग न करें। परमेश्वर का सम्मान करने से जो स्थायी आनंद और शांति मिलती है, वैसी इस दुनिया में नहीं मिलती। हम बुराई से सिर्फ इसलिए नहीं हटते क्योंकि बुराई बुरी है, हम परमेश्वर से संतुष्ट होने के लिए बुराई से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमें उनकी महिमा के लिए काम करने में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। जब हम उनके प्रति समर्पण कर देते हैं, तो वो हमें दूसरों के साथ इस खूबसूरत दोस्ती को साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसे सुसमाचार प्रचार कहा जाता है, और उन्हें यह अनुभव करना सिखाते हैं जिसे शिष्यत्व कहा जाता है। वो हमें जो देते हैं वो इतना अच्छा होता है कि जब हम उसका अनुभव करते हैं, तो हम उनके बारे में साझा करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। एक बार जब हम चख लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रभु भले हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से लोगों को बताना चाहेंगे ताकि वे उस स्वतंत्रता और आनंद को महसूस कर सकें जो हमें दी गई है। फिर से यहाँ अच्छी खबर है, सबसे अच्छी खबर। परमेश्वर हमें प्रेम करने और माफ करने का वादा करते हैं, हमें ऐसा जीवन देते हैं जो खत्म नहीं होगा, बुराई से मुक्ति। और जब तक हम प्रेम में उन पर भरोसा करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं, तब तक उनके साथ घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। यदि हम अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर हमें बुरी इच्छाओं के अभिशाप से, मृत्यु और निराशा से पूरी तरह से मुक्त एक नया शरीर देने का वादा करते हैं, ताकि हम हमेशा उनके साथ रह सकें। बुरी खबर ये है कि जो कोई भी परमेश्वर के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, उसे अंतहीन सजा और परमेश्वर से अलगाव भुगतना पड़ेगा, जो हम सभी ने अपनी बुराई के माध्यम से अर्जित किया है। परमेश्वर की अच्छी खबर, और जब हम उसे अस्वीकार करते हैं, तो जो होता है उसकी बुरी खबर सुसमाचार को हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सत्य बनाती है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर की महिमा करने और सदा के लिए उसका आनंद लेने के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें स्वयं को प्रसन्न करने वाले जीवन और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन के बीच चयन करना होगा। सच तो ये है कि बुरी इच्छाओं के आगे झुकना हमें अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रखता। बुराई में लिप्त होने से अवसाद, आत्म मूल्य की टूटी भावना और विनाशकारी बुरे व्यवहार की लत लग जाती है। बुराई हम पर शासन करती है, हमारी खुशी खत्म कर देती है और हमें खोखला और अकेला छोड़ देती है। यह हमें गुलाम बनाता है। जब हम खुद को बुराई के गुलाम होने के बजाय परमेश्वर की भलाई के इच्छुक सेवकों के रूप में देखना चुनते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और सुसमाचार में उनके द्वारा दिए गए महान वरदान हमें खुशी और स्वतंत्रता देते हैं, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसमें बस सब कुछ लगता है, हमारी सारी अनाज्ञाकारिता के बदले उसकी सारी क्षमा, जीवन और प्रेम पूर्ण दयालुता। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है उद्धार की कविता।
क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह, प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जीऊं, मेरी मदद करो।
गहराई में देखें, अध्याय 17 पढ़ें, जो उस प्रार्थना का रिकॉर्ड है जो यीशु ने मरने से पहले सीधे आपके और मेरे लिए की थी। यीशु ने जो कहा, उसके बारे में जो भी विवरण आपको दिलचस्प लगे, उसे लिखने का प्रयास करें, फिर पढ़ें और किसी अन्य ईसाई के साथ अपने प्रश्नों पर चर्चा करें। व्यक्तिगत स्तर पर यीशु द्वारा आपके लिए प्रार्थना करने के बारे में आप क्या सोचते हैं?